लाइफ में इंग्लिश के बिना तो ना हो पाएगा, मतलब एटलीस्ट ठीक है बोलना नहीं आए तो एटलीस्ट समझ आए इंग्लिश. तब तक हम लोग वही पढ़े थे कि सेल को कोशिका पढ़ रहे हैं और एक्सेलरेशन को त्वरण पढ़ रहे हैं, और बिल्कुल अलग जिंदगी थी मेरे आसपास वालों से मेरी, मैं उनके साथ नहीं कनेक्ट हो पाता था. जब मेरा कॉलेज खत्म होने वाला था आई वॉज सुपर डिप्रेस्ड. मेरी ऐसी जगह जॉब लग गई थी जहाँ पे मुझे जाना ही नहीं था, मतलब जिस दिन जॉब का वो दे के आया और मेरा नाम आ गया लिस्ट में ना, उससे ज़्यादा दुख मुझे नहीं हुआ, ये मैं पहली बार बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा दुख मुझे नहीं हुआ. लोग मुझे आके मेरे वॉल पे 1000 कॉमेंट्स कॉन्ग्रेचुलेशन के हैं, मैं आई हेटेड दैट. तो यहाँ तक मैंने 5 साल ना बहुत ना बोले, उसके बाद लाइफ में ये सिचुएशन आ गई कि मुझे हर चीज के लिए हाँ बोलना पड़ा.
मेरा सबसे बड़ा फियर ही है, डर ही है कि मैं
I've always wondered what does it take to build confidence from a very young age. That's what we've talked about in today's episode. We've talked about how to develop confidence, how saying no to things at an early age becomes a curse in life, and how do you find out those hacks which can help you keep committed to the process, because every now and then we keep feeling like, ah, I don't want to do this. And in today's episode of Figuring Out, we have Rishabh Jain. You might know him as Jagruk RJ from Label Law Advisor. He graduated from IIT Bombay and then started working on a few startups which didn't lead him to success. But then he and his partner Mandeep started with a YouTube channel, Labor Law Advisor. As his family was into labor law consulting for past 40 years, now he has built one of the biggest channels on this topic in the country, and he's one of the wisest brains I have gotten chance to speak with, because the way he's building team, the way he thinks about process, the way he nurtures people and helps them build confidence is commendable. Make sure that you watch this episode till the end and keep figuring out.
Hum log baat kar rahe the ki you wanted to talk about a story specific jo aapka perspective life mein change kiya jisne. So okay. Start with one.
ठीक है कूल. तो आई टॉक बिट अबाउट माई सेल्फ. तो मैं एक जोधपुर सिटी है राजस्थान में, काफ़ी छोटी सिटी है, वहाँ पे पला बड़ा हूँ. 12th तक कहीं ऐसा ज़्यादा बाहर नहीं गया. आई एम नॉट आउटस्पोकन लाइक यू, या ऐसा जिंदगी में ऐसा पर्पस भी नहीं बनाया कि ये करना है ये करना है, बहुत ही सब चीज़ें नॉर्मल.
12th तक मैं भी ऐसे ही था, सेम इंदौर से.
बहुत नॉर्मल लाइफ गई है. ठीक है, मैं हिंदी मीडियम में था, एक प्रॉपर हिंदी मीडियम गांधीयन स्कूल, जहाँ पे क्लास 6th में हमको ABC सिखाई गई थी, वो भी इंग्लिश को इंग्लिश नहीं आंग्ल भाषा बोलते थे. ठीक है, स्कूल में सबसे पहले हमारा काम होता था कि स्कूल में सब जल्दी पहुँचना चाहते थे. यू लास्क वाई, क्योंकि स्कूल में जाके झाड़ू लगाना और कचरा उठाना हमारा काम था. तो जो लोग जल्दी पहुँच जाते थे उनको झाड़ू मिलता था, जो लेट पहुँचते थे उनको कचरा उठाने वाले वो तगारी मिल जाती थी. तो यार सब कोई कचरा नहीं उठाना चाहता, तो झाड़ू तो पहले जल्दी लोग 7 बजे क्यों आ रहे हैं 7:30 के स्कूल में, ताकि झाड़ू मिल जाए, झाड़ू अलॉट होता. तो वहाँ पे लाइन लगती थी झाड़ू अलॉटमेंट के लिए, झाड़ू लगाते थे. तो अच्छी स्कूल थी, मतलब नो कंप्लेंट्स, बट इट वाज अ हिंदी मीडियम स्कूल. तो मेरी मदर, और 8th तक मैं वहाँ पे पढ़ा था, मेरी मदर वॉज अ कॉन्वेंट एजुकेटेड, एंड उन्होंने मेरे जब मैं 8th कर रहा था उसके साथ साथ उन्होंने LLB करी एंड गोल्ड मेडलिस्ट LLB में. तो उनको ये पता था कि यार लाइफ में इंग्लिश के बिना तो ना हो पाएगा, मतलब एटलीस्ट ठीक है बोलना नहीं आए तो एटलीस्ट समझ आए इंग्लिश. तब तक हम लोग वही पढ़े थे कि सेल को कोशिका पढ़ रहे हैं और एक्सेलरेशन को त्वरण पढ़ रहे हैं, और बिल्कुल अलग जिंदगी थी मेरे आसपास वालों से मेरी, मैं उनके साथ नहीं कनेक्ट हो पाता था बचपन में. तो फिर भी इतना समझ नहीं आता था, जैसे जैसे 8th तक आने लगे तब चीज़ें समझ आई. तब शी फोर्स्ड मी कि यार बस 8th तक ही है, अगले साल चेंज ही करनी, इंग्लिश मीडियम में ही जाएंगे, सीधा हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में जाएंगे हम. और मतलब आई क्राइड, आई डिड एवरीथिंग, आई गेव लॉट ऑफ एग्जांपल्स के देखो ये भैया भी तो हैं, ये तो भैया IAS बन गए, हमारी स्कूल से ही हैं, होते हैं हर स्कूल से ना
कोई ना कोई एग्जांपल,
कोई ना कोई एग्जांपल्स. वो नहीं मानी, और मेरे घर में भी कोई भी सपोर्ट में नहीं था इतना कि ठीक है यार क्या ही फर्क पड़ता है, हम बाकी सब भी हमारे हिंदी मीडियम में पढ़े हुए क्या फर्क पड़ता है. बट शी फोर्स्ड मी, एंड अब ऐसा नहीं कि सिर्फ फोर्स किया, प्रॉपर एक प्लान बना के यार कैसे ट्रांजिशन करना है बच्चे को. तो 2 महीने की समर वैकेशन होती है, पहले ऐसा नहीं होता था, अभी तो ऐसा होता है समर वैकेशन से पहले भी क्लासेस शुरू हो जाती है, उसके बाद फिर बीच में वो बिल्कुल बेकार है, नहीं तो पहला समर वैकेशन के बाद ही क्लासेस शुरू होती है. तो 2 महीने की समर वैकेशन थी, उससे पहले हिंदी मीडियम था, 8th में हमारे बोर्ड हुआ करते थे हिंदी मीडियम में, बोर्ड एग्जाम्स दिए, बोर्ड में मेरिट वेरिट सब आई, बट इंग्लिश मीडियम वॉज एकदम अनदर बीस्ट.
तो नाइन्थ क्लास में जा रहे थे,
नाइन्थ में जा रहा हूँ मैं, जब सारे वो पहली बार फिजिक्स और थोड़ी इंट्रोड्यूस हो रही है केमिस्ट्री और हर चीज, तो उन्होंने एक सर को बुलाया मेरे घर पे, हर सब्जेक्ट के उन्होंने सर बुला लिए। वो सर ऐसे थे जो फिजिक्स, जो मेन सर थे फिजिक्स मैथ्स, वो उन्होंने भी सेम चीज करी, हिंदी टू इंग्लिश हो गए थे। तो ही यूज टू टीच मी पहले हिंदी में, फिर उसी चीज का इंग्लिश में, कि इस की गति इतनी है, इसका त्वरण इतना है, तो फाइनली इसकी चाल कितनी हो जाएगी, व्हाटएवर। और फिर उसी को इसको एक्सेलरेशन त्वरण त्वरण कह करके मैथ्स ऐसी पढ़ाई, केमिस्ट्री ऐसी पढ़ाई, फिजिक्स पढ़ाई, ठीक है। हिंदी में मैं अच्छा था, हिंदी में जरूरत नहीं हुई, सब्जेक्ट्स में सब में अच्छा था मैं, इट्स जस्ट दैट इंग्लिश ही नहीं आ रही थी,
लैंग्वेज
लैंग्वेज बैरियर था। तो दो महीने में इतनी चीजें हो गई कि यार अपने को लगा कर लेंगे कुछ। फिर जब मैं क्लास में गया, उन्होंने फिर स्कूल भी ऐसी चुनी व्हिच वाज इंग्लिश मीडियम, बट इट वाज सेमी इंग्लिश मीडियम समझ लो यार, मतलब एकदम
बात हिंदी में ही कर रहे
हैं, बात हिंदी में ही चल रही थी थोड़ी, टीचर कोई कोई आता था इंग्लिश में बोल देता था, बाकी आधे टीचर हिंदी में ही बोल देते थे, तो वो भी एक अच्छी चीज हुई। एंड आई, जो हमारा पहला टर्म टेस्ट होता है, फिर हाफ ईयरली होता है, सब में मैंने टॉप किया उस स्कूल में जाके भी। तो दैट गेव मी लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि यार स्ट्रेटेजिकली कुछ कुछ चीजें प्लान करोगे ना तो वो अच्छी हो जाएगी। आई वॉज ऑलवेज गुड इन हिंदी, तो मैं बहुत सारी पब्लिक स्पीकिंग करता था, मैं कविताएं लिखने लग गया 9th-10th के आसपास। तब अगेन मेरे पेरेंट्स ने इनकरेज किया कि यार अपन इसकी बुक पब्लिश कराएंगे, और बहुत फाइट मार के उन्होंने कैसे ना कैसे करके मेरी बुक, जब मैं 11th में आया, 11th के स्कूल शुरू हुई थी, अब मैंने 11th में और बेटर इंग्लिश मीडियम में चला गया था, तब उन्होंने हिंदी की मेरी बुक पब्लिश करवा दी। तो मेरी हिंदी कविताओं की बुक 11th क्लास में पब्लिश हुई थी विद 30 ऑफ माई पोएम्स।
वाओ।
तो अगेन दैट गेव मी लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि ठीक है यार अपन पढ़ाई में ठीक है, इंग्लिश अपनी उतनी अच्छी नहीं, बट अपन पढ़ाई में ठीक है, और अपन हिंदी में बहुत अच्छा है, बहुत तोड़ है। ये सिचुएशन बाद में मेरे लिए जिंदगी में वरदान भी बनी और कर्ज भी बनी, वो भी मैं बताऊंगा। बट जो आप, जो पेरेंट्स ने मुझे बचपन में सपोर्ट किया ना, और एक बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजन लेने के लिए स्ट्रेटेजिकली ट्रांजिशन करवाया, अगर तो मेरे जिंदगी का पहला अगर टर्निंग पॉइंट माने कि अगर मैं नहीं गया होता इंग्लिश मीडियम में, मैंने ये सब स्ट्रगल नहीं करा होता, मेरी बुक नहीं पब्लिश की होती, मुझे ये बोलना नहीं आता, आज कैमरे के सामने बोलने में कोई शर्म नहीं है, बहुत लोगों को होती है, स्टेज पे बोलने में कोई शर्म नहीं, बहुत लोगों को होती है, वो सारे फियर उस एक चीज से निकले कि यार एक वो ट्रांजिशन हुआ, और उस ट्रांजिशन के बाद एक चीज जिसमें मैं बाकी लोगों से बहुत अच्छा था, यार एटलीस्ट रिलेटेड अंडों में काना राजा समझ लो, वो था वो हिंदी। तो मैंने बहुत सारे स्टेजेस पे परफॉर्म किया है, पोएम्स बोली है, वो सब चीजें करी, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन थिंग कि मैं यहाँ पे आके कंफर्टेबल हो गया सेकंड वर्ल्ड में, और वहां पे जो एक चीज में अच्छा था वो आइडेंटिफाई कर ली गई, और उस पे मुझे एक दो स्टेप आगे जाने का मौका मिल गया विद सपोर्ट ऑफ माय पेरेंट्स। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कोई पेरेंट्स तुम्हारे पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो उनको अपने बच्चे के साथ एटलीस्ट ये करने की कोशिश करनी चाहिए, और आजकल वैसे बहुत करते हैं, आजकल सब अपने बच्चों पे इस तरह के ध्यान।
दिस नॉट रियली अ लेसन फॉर पेरेंट्स, दिस इज फॉर एवरी फ्रेंड, ये हर दोस्त के लिए, हर बिजनेस ओनर के लिए, कि जो जिनकी तुम केयर करते हो, पुट देम, अगर उनके लिए कुछ और लाइफ में बेटर है, ठीक है, भले वो बहुत अनकंफर्टेबल भी हो, सो उन्हें अनकंफर्टेबल पोजीशन में डालो, बट एक डालने के बाद एक प्लान और स्ट्रेटेजिकली उनकी हेल्प भी करो, और थर्ड उनको तुम हेल्प करो कोई ऐसी चीज आइडेंटिफाई करने में जो उनकी स्ट्रेंथ है, और उसमें तुम उसको पुश करो ताकि उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होते जाए, ताकि वो थ्रैश नहीं हो जाए। दैट इज व्हाट योर पेरेंट्स डिड।
100%, 100%।
So this is for everyone, even for a boss, for employees, for friends. हर किसी को ये help करनी चाहिए. If you want other person to grow, that's one. कि सिर्फ uncomfortable लोगों को position में डालने से कुछ नहीं होगा.
कुछ नहीं होगा. आपने उसको कुछ plan ही नहीं बताया, वो बेचारा बहुत परेशान हो जाएगा. अगर मुझे सीधा ही डाल दिया होता और मैं day one पे English medium में जाता ना, मैं clueless हो जाता. हो सकता है मेरी पढ़ाई पूरी, जो एक चीज मेरी अच्छी थी वो भी खराब हो जाती. Confidence पूरा खत्म हो जाता. नहीं तो मेरे पास एटलीस्ट ये है क्या यार, देखो मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं तुमसे इंग्लिश में उतनी अच्छे से बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरे देख लो फर्स्ट तो मैं ही आया क्लास में, तो एटलीस्ट समथिंग वाज वर्किंग आउट
द कॉन्फिडेंस. यू नो व्हाट वन थिंग आई बिलीव कि हर कोई ये स्टार्ट कर सकता है करना, कि आई थिंक जो सबसे बड़ा ब्लेसिंग होती है ना लाइफ में वो है कॉन्फिडेंस, ठीक है. और कॉन्फिडेंस मेरा मानना ऐसा है, ये सब बोलते हैं कि अंदर से आता है, अंदर से नहीं आता, दिया जाता है. Right. अगर आपको कोई अप्रिशिएट करेगा ना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंट बनता है, नहीं तो आपको कोई कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा, आप कुछ नहीं हो,
कुछ नहीं हुआ।
आप हमेशा, क्योंकि आप कितने भी कॉन्फिडेंट हो, कितने ही बड़े बन जाओ, आप हर पॉइंट पे अपने आप को दूसरों से कंपेयर कर रहे हो। कभी अगर आप पैसे में अच्छे हो तो आप अपने आपको लुक्स पे कंपेयर करोगे, आप लुक्स पे अच्छे हो तो फेम पे करोगे, फेम पे अच्छे हो तो इंटेलिजेंस पे करोगे, इंटेलिजेंस पे अच्छे हो तो किसी और चीज पे करोगे, बट हमेशा आप कंपेयर करते रहते हो, राइट। तो आप कॉन्फिडेंस हमेशा देते हो दूसरों को, कभी आपके अंदर नहीं आता। तो हर इंसान ये स्टार्ट कर सकता है दैट वॉट दे कैन डू इट, हुएवर दे मीट उनको एक जेन्युइन बात पे कॉम्प्लीमेंट करो, कोई भी एक चीज पे, वो ऑटोमेटिकली सामने वाले का इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट बिल्ड करेगा कि वो आइडिया ही नहीं कैसा होगा, इट विल मेक दैट डे।
वो लाइफ भर आपका ऋणी रहेगा कि यार ये चीज इसने मेरे लिए क्या सही करी थी, इसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया था उस पॉइंट पे। अभी जब हमारा फिनक्लेव इवेंट हुआ था तब अनंत भाई ने शुरुआत में मुझे याद है मुझे कितना अच्छा लगा, कुछ भी नहीं था, सिंपल बात ही, मुझे मिले थे 2019 में, हमको इवेंट पे मिले थे, उस समय इनके 30,000+ सब्सक्राइबर्स थे, मेरे उस समय 7-8 लाख कुछ होंगे, आई डोंट नो। मैं इनके पास बैठा और मैंने इनको बोला कि यार, 2-4 बार बात बोल दी, मुझे तो याद भी नहीं था कि यार, मैंने कहा यार करो करो बहुत अच्छा रहेगा, यूट्यूब में आप कर सकते हो, मचा सकते हो, आपका फिनेंस इतना अच्छा है, ये वो। एंड जो फिनक्लेव इवेंट हुआ वेयर एवरीवन वाज प्रेजेंट, रचना वगैरह, प्रांजल, उनके सामने जब स्टेज पर जाके उसने पहली बार ये बात बोली कि आई वॉन्ट टू थैंक माई फादर एंड आई वॉन्ट टू थैंक ऋषभ फ्रॉम लेबलो एडवाइजर कि उन्होंने मुझे मोटिवेट किया चैनल को ग्रो करने के लिए। आपकी तीसरी बात, बाय गॉड, मेरे लिए इट डिडंट कॉस्ट मी पेनी, इतनी सी बात उस बंदे को कहाँ लग गई और उसने उसको ले लिया और कॉन्फिडेंस आ गया, उसने यूट्यूब बनाया और बहुत अच्छा करने लग गया। तो मुझे तो अभी सोचता हूँ गूज़बम्स आ जाते हैं कि यार ये दिस इज समथिंग, मतलब आई डोंट नो,
जस्ट दैट वन मोटिवेटिंग लाइन। तो ये हमको हर किसी के साथ करना चाहिए, दैट इज राइट, बिकॉज़ यू नेवर नो, तुम जिसको भी बोल रहे हो नेक्स्ट आनंद बन जाए।
परफेक्ट है यार, ये तुम्हारी ये खूबी है कि कॉन्वर्सेशन से, मतलब मैंने सिर्फ कहानी सुनाई, मैंने इतनी सोची नहीं, जैसे तुम, मैंने नहीं सोचा कि हमारे साथ लोग क्यों रुक जाते हैं। यू टेक आउट दोज एक्शनेबल आइटम्स, दैट्स वाई आई थिंक योर पॉडकास्ट इज फेमस, बिकॉज तुम उस पूरी कहानी को सिंप्लीफाई करके 3 पॉइंट बना देते हो कि यार ये दिस इज वॉट इट एक्चुअली इज, क्योंकि तुम्हारे साथ सेम कहानी तो नहीं होगी बट ये 3 पॉइंट तुम कर सकते हो।
थैंक यू सो मच, मैं ये ट्राई करता हूँ कि किसी कैसे मैं आसान बना पाऊँ लोगों को, क्योंकि मुझे डिफिकल्ट चीजें समझ नहीं आती एंड मुझे कहानियों से सीखने को बहुत मिलता, लाइक आई लव स्टोरीज। मैं, अगर आप मुझे सिर्फ बोलते ना कि मेरी कंपनी में इसकी वजह से 1.123 की वजह से लोग स्टे कर रहे हैं, मैं शायद कभी याद नहीं रखता।
सही बात है,
बट बिकॉज यू टोल्ड मी अ स्टोरी, मैं अब हमेशा याद रखूंगा कि कैसे आपको अनकंफर्टेबल करा था और उसकी वजह से आप इसकी वजह से आपकी लाइफ में ट्रांजिशन आया,
राइट।
सो दैट्स व्हाई आई फील इट्स ऑलवेज गुड कि हर चीज का आपने एक बिल्टअप तो दे दिया, उसका कंक्लूजन भी देना चाहिए।
तो जो मेरी मैं हिंदी में अच्छा था वो मेरे लिए बून भी रहा और कर्ज भी।
ऐसा क्यों?
तो जब मैं कॉलेज में गया, तो देर आर लॉट ऑफ स्टोरीज बट मैं कुछ अच्छी पिकी स्टोरी बता रहा हूँ। तो जब मैं कॉलेज में गया, इट वॉज अ बेस्ट कॉलेज इन इंडिया, यू कैन गेट, मतलब IIT बॉम्बे, सब कुछ था वहाँ पे, मतलब सब कुछ आप जो सोच सकते हो वहाँ पे था। आपको स्पेस में सैटेलाइट भेजना है तो देर वर टीम जो स्पेस में सैटेलाइट भेज रही थी। आपको ऐसा घर बनाना है जो पूरा पैक करके पेरिस चला गया और पेरिस में डिस्प्ले होगा, वो टीम वहाँ पे बना रही थी। आपको अंडर वाटर सबमरीन बनानी, वो बना रही थी। आपको स्पोर्ट्स खेलना है A to Z, कोई भी इंटरनेशनल लेवल के स्टेडियम्स। आपको कल्चरल में कुछ भी करना है, डांस, म्यूजिक, आर्ट्स, मतलब अच्छी अच्छी जगह, पृथ्वी थिएटर में परफॉर्मेंस, सब कुछ। पढ़ाई करनी है, सब कुछ, रिसर्च करनी है, सब कुछ था वहाँ पे। तो कॉलेज में जब मैं गया तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन आए कि ये कर लेंगे, उसमें से एक हिंदी क्लब भी था, तो दैट बिकेम माई ऑब्वियस चॉइस कि ये अपन करते हैं। एंड आई सेड नो टू सो मैनी थिंग्स इन माई कॉलेज, यार डांस कर ले इस बार, चल फर्स्ट ईयर का कर ले, नहीं यार हम घूमने जा रहे हैं दमन, एकदम इम्प्रॉम प्लान बन रहा है, चल ले, नहीं यार क्लास का टाइम हो गया ऋषभ, आज कुछ अच्छा कुछ पढ़ना है इम्पोर्टेंट, यार चल सो रहा हूँ यार, नहीं यार, ठीक है। ओनली थिंग आई डिड सिंसियरली वॉज हिंदी वाला थिंग, उसमें मैंने अच्छा किया, आई परफॉर्म्ड एट NPC, ये बहुत सारा अच्छी चीज करी, बट उसके बियॉन्ड में अपॉर्चुनिटीज होते हुए भी नहीं गया। एंड नॉट जस्ट चीजें, इवन दोस्त, जो कॉलेज में जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बननी चाहिए एन नंबर ऑफ पीपल के साथ, मैं शायद N/4 से भी नहीं बना पाया, उतनी कम लोगों के साथ बना पाया, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजों में पार्टिसिपेट नहीं करता था खुद से ही, यार ये चीजों में मैं अच्छा नहीं हूँ, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, एंड जो मैं अच्छा हूँ वो मैं मस्त कर रहा था। मुझे ही नहीं पता था उस समय तक कि यार जो मैं अच्छा भी हूँ कर रहा हूँ उसकी लाइफ में वैल्यू कितनी है जब आप प्रोफेशनल लेवल पे आओगे. दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 12-13 की बात, जब यूट्यूब वगैरह कुछ ऐसा सीन नहीं था यार ये तो ठीक है अभी हो गया, बट क्या आप इसको एज अ करियर भी परस्यू कर सकते हो बोलने को, वो समय नहीं क्लियर हुआ. एंड 4-5 जब मेरा कॉलेज खत्म होने वाला था, आई वॉज सुपर डिप्रेस्ड. मेरी ऐसी जगह जॉब लग गई थी जहाँ पे मुझे जाना ही नहीं था, मतलब जिस दिन जॉब का वो दे के आया और मेरा नाम आ गया लिस्ट में ना, उससे ज़्यादा दुख मुझे नहीं हुआ. ये मैं पहली बार बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा दुख मुझे नहीं हुआ. लोग मुझे आके मेरे वॉल पे 1000 कॉमेंट्स कॉन्ग्रेचुलेशन के हैं, मैं आई हेटेड दैट. मुझे जाना ही नहीं था वहाँ पे. जिस कंपनी में जाना था वहाँ पे लास्ट राउंड में मैं अटक गया कुछ रीज़न से. जहाँ जाना ही जाना था वहाँ पे हो गया. मैंने कहा चलो स्टार्टअप करेंगे, स्टार्टअप में कुछ चमक ही नहीं रहा है, कुछ आता ही नहीं जिंदगी में,
क्योंकि कुछ और एक्सप्लोर ही नहीं
किसी के साथ अपन ने कर लिया स्टार्टअप, वो जैसा बोल रहे हैं वैसा कर रहे हैं, अपने कुछ ओपिनियन ही नहीं है जिंदगी में. फिर किसी ने बोला, तो यहां तक मैंने 5 साल ना बहुत ना बोले. उसके बाद लाइफ में सिचुएशन आ गई कि मुझे हर चीज के लिए हाँ बोलना पड़ा. ठीक है, हर चीज के लिए हाँ बोलना पड़ा. कॉलेज खत्म हो गई, जिस जॉब में जाना था उसको भी मैं ना बोल के आ गया. दिसंबर में ना बोल दिया, नहीं आऊंगा, मैं आऊंगा नहीं. ऑफर लेटर भेजा, साइन ही नहीं करके भेजा. ठीक है, तो सब जगह ना बोल दिया. अब लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ गई कि अब ना बोलने के लिए आपके पास कुछ है ही नहीं, हर चीज के लिए हाँ बोलना है.
ठीक है, बेटा
कुछ नहीं है, घर आ जाओ, फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लो, पसंद नहीं आ रहा तो भी हाँ ठीक है, क्या ही करेंगे. फिर बात आई शादी की, शादी कर लेंगे जल्दी करेंगे. अब आप ना बोलने के आप सिचुएशन में ही नहीं हो, वो एक बहुत अच्छा डिसीजन हो गया है लॉन्ग टर्म में, बट ठीक है जल्दी शादी हो गई. किसी मेरे कोई प्रोफेसर ने बोला कि यार सिविल स्ट्रक्चरल में अपन कंसल्टिंग करेंगे, मेरे साथ शुरू करोगे? ठीक है हाँ कर लेंगे. मल्टीपल बहुत सारी चीज़ें जो मैं सिविल में उतना अच्छा भी नहीं था, बस एवरेज स्टूडेंट, तो मैंने वो भी कर लिया. धूपों में खड़े रह के बिल्डिंग बनवा रहे हैं, सब चीज़ें कर ली मतलब. और मेरे जब दोस्त अच्छा जॉब पैकेज वैकेज, तो बड़ा वो स्ट्रगल रहता था. उसके बाद मेरे कोई सीनियर आए, यहाँ तक हाँ बोलने की आदत सी हो गई थी कि यार चलो हर चीज़ के लिए हाँ बोल रहे हैं अपन. अब धीरे धीरे वो चीज़ जो थी, जो एक कंपल्शन था, वो धीरे धीरे एक आदत में बदल रहा था कि यार हाँ 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 बोल देंगे. उसके बाद 2015 मेरे एक पार्टनर आए बॉम्बे से, सीनियर थे, बहुत अच्छी कंपनी, बहुत अच्छी पोजीशन छोड़ के स्टार्टअप कर रहे थे. बोले तू भी करेगा क्या? मतलब मुझे बताया आइडिया, मैंने बोला मुझे भी करना है, आपके साथ ही करूंगा. बोले आ जा मेरे साथ. तो हमने अपना एडटेक वेंचर शुरू किया, फंड वन रेज किया. बड़ा ये पहली बार मेरा जिंदगी में ऐसा एक्सपीरियंस था कि यार चीज़ें सीख रहे हैं, पैसा है, अब इसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, टीम कैसे हायर करनी है. जहाँ 40-50 हज़ार सुन के ही वो लग जाता था कि यार इतना तो बहुत कमाई हो जाएगी, उससे उस पर आप लोगों को हायर कर रहे हो, तो बड़ा वो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली. और आज मैं जब सोचता हूँ कि यार क्या बेवकूफियां करी, आज इतनी आती चीजें तो वो नहीं करता मैं गलतियां. बट एनीवेज आई सेड यस टू दैट. फिर 2017 में आइडिया आया कि चैनल शुरू कर लेते हैं, तो आई सेड यस, चलो कर लेते, साइड में चलता रहेगा कोई बात नहीं. सो आई सेड यस टू सो मेनी थिंग्स एंड दैट स्टार्टेड टू चेंज थिंग्स फॉर मी. पहले मैंने बहुत नो बोला. अब जब बहुत नो बोलते हो तो आप ऐसी सिचुएशन में आ जाते हो कि आपको हर जगह यस बोलना पड़ता है. फिर आपने एक लंबे समय तक बहुत जगह यस बोला ना, तब आपके पास फिर से वो पावर आती है कि आज आप नो बोल सकते हो. मैं आज ब्रांड को नो बोल देता हूँ, नहीं करूंगा भाई. कोई कॉलेज में मुझे लगता है यार रिकॉर्डेड सेशन है या नहीं, मुझे मजा नहीं आता, लाइव मजा आता है, नहीं रिकॉर्डेड नहीं हो पाएगा, लाइव कर सकते हैं तो कर लेते हैं. ठीक है, मुझे कोई बोलता है यार ये इसमें बहुत पैसा है कर ले, मैं क्लियर बोलता हूँ नहीं, मैं पैसे के लिए करने वाला नहीं करना. आज मैं वापस उस कंडीशन में आया हूँ जब मैं मिक्स्ड सिचुएशन में हूँ, मैं अपनी बाय चॉइस नो बोल पाता हूँ. तो अगर आपने जिंदगी में बहुत सारी चीज़ों के लिए नो बोला ना, तो बहुत प्रोबेबिलिटी ऐसी कि आप ऐसी जगह पहुंच जाओगे जहाँ पे आपको हर चीज के लिए यस बोलना पड़ेगा.
सो द लेसन आउट ऑफ दिस इज कि अगर जब तुम्हारे पास चॉइसेस होती है, तब उस टाइम पे तुम सिर्फ ये सोचो कि मुझे जो आता है मैं वही करूंगा, जिसमें मैं कंफर्टेबल हूं मैं वही रहूंगा, जो चीज मुझे लगती है कि मैं अच्छा हूं तो मैं वही करूंगा, और कभी मैं नई चीज ट्राई करने की कोशिश ही नहीं करूंगा सिर्फ इस डर से कि क्या उसके रिपरकशंस होंगे, क्या लोग सोचेंगे. तो अगर तुम उस टाइम पे हर चीज के लिए ना बोलते हो, एक पॉइंट आएगा जब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा, भले फिर तुम अच्छे दिखो या नहीं दिखो, तुम्हें वो हाँ बोलना ही
पड़ेगा. हाँ बोलना ही पड़ेगा आपको. और ये ठीक है, 100 में से 1 जने के लिए ट्रू हो सकता है कि यार मैं तो कोडिंग ही करूंगा और बाकी सब नहीं बोलूंगा, और उसका हो सकता है कोडिंग में मस्त करियर सेट हो जाए. बट इसकी प्रोबेबिलिटी, लाइफ है ना, लाइफ कैसे भी ट्विस्ट एंड टर्न्स लेती है.
सो कीप डूइंग मल्टीपल थिंग्स.
हाँ बोलते रहो, मतलब जब तक कि आप बहुत अनकंफर्टेबल नहीं हो किसी चीज को करने के लिए, तब तक आप हाँ बोलने में क्या हम ही क्या
सो गिव योरसेल्फ अ चांस अर्ली ऑन कि तुम एक्सप्लोर कर रहे हो नई चीजें, तुम हाँ बोलो, ट्राई करो. मेरे लिए यू नो ये उल्टा रहा है, लाइक एग्जैक्ट उल्टी जर्नी.
ओके,
मैं हर चीज में हाँ बोलते गया था स्टार्टिंग से.
ओके,
एंड आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट अगेन ब्लेसिंग एंड अ कर्स मेरे लिए भी, कि मतलब मैं स्पोर्ट्स में था, मेरे दोस्तों ने चल वॉलीबॉल खेलते, मैं वॉलीबॉल में खेल लिया, मैं उधर डिस्ट्रिक्ट तक खेल लिया. फिर मेरे फ्रेंड्स बोलते कि चलो फुटबॉल खेलेंगे, वहाँ खेल लिया, बहुत बकवास था, बिल्कुल फेल हो गया, नहीं खेल पाया. फिर मेरे फ्रेंड्स बोला क्रिकेट खेलते हैं, टीटी खेलते. मेरा हर छह महीने में एक नया स्पोर्ट खेलता था.
ओके,
इसकी वजह से अब आई एम नॉट गुड एट एनी स्पोर्ट बट आई कैन कम्पीट इन एवरी स्पोर्ट.
बहुत अच्छी बात.
मतलब
मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू आर फिट.
यस, सो इट्स दैट्स राइट, कि मैं 10 स्पोर्ट खेल सकता हूँ और मैं 10 लोगों को कंपनी दे सकता हूँ और उनके साथ जाके बस मैं स्पोर्ट खेलने फिट हो सकता हूँ.
कि तुम्हारी नेटवर्किंग में कितना हेल्प किया है तुम्हारे स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड. फिर
बहुत ज्यादा, इनफैक्ट मेरा सबसे बड़ा जो एडवांटेज है नेटवर्किंग जिसमें किया है मैंने, मैं लोगों के साथ बैठता हूँ, फिर बात करता हूँ, फिर उनसे पूछता हूँ कि तुम्हें खेलना क्या पसंद है. कोई बोलता है बैडमिंटन, मैं चलो बैडमिंटन खेलेंगे. कोई बोलता है स्क्वाश, मैं स्क्वाश खेलेंगे. कोई बोलता है क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलेंगे. सबसे खेल खेल के ऐसे करके मैंने नेटवर्किंग कर ली. तो आई हैव ऑलवेज सेड यस, वेदर इज स्पोर्ट्स अपॉर्चुनिटीज, किसी ने बोला स्टॉक मार्केट के बारे में सीख लो, फाइनेंशियल मार्केट्स, मैं वो थोड़ा बहुत सीखने लग गया, तो थोड़ा आज मैं कंटेंट फाइनेंस के बारे में बना लेता हूँ. किसी ने मुझे बोला था कि डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीख लो, तो मैंने गूगल से सर्टिफिकेशन कर लिया. लाइक आई केप्ट डूइंग सो मेनी थिंग्स. इसकी वजह से आई थिंक लाइफ हैज गिवन मी सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, एंड उसी की वजह से मेरे को लगता है कि वो इट्स अ कर्स ऑल्सो दैट आई एम नॉट बेस्ट एट एनीथिंग, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन वन थिंग.
मैंने बताया कि हम लोग कभी इट वॉज कॉन्टेंट फर्स्ट एंड बिजनेस लेटर भी नहीं था, बिजनेस था ही नहीं, देयर इज नो बिजनेस. तो क्यों नहीं था, क्योंकि पहली बात तो जैसे तुमने बताया कि यार तुमने बहुत सारे लोगों से मिले जो सक्सेसफुल है उनकी ज़िंदगी में और उनसे सीखने को मिला. जब तक आपको वो नहीं मिलता है तब खुद से फिगर आउट करना काफ़ी थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है. यार आपको कोई इंस्पिरेशन ही नहीं, आपको पता ही नहीं है जो चीज़ हो सकती है वो आप खुद से दिमाग लगा के कैसे
बना सकते.
आपको पता नहीं है कि यार ब्रांडिंग में अफिलिएट मॉडल भी करके चीज होती है, आप करो. आपको पता नहीं वीडियो में स्पॉन्सरशिप्स भी ले सकते हैं, आप नहीं करोगे. आपको पता नहीं आप कोर्सेज भी बना सकते, आप नहीं करोगे.
अवेयरनेस ही नहीं तो करेंगे क्या.
तो ये समझ आ रहा था कि यार कुछ चाहिए अपने को. और फैन फेस्ट होता था यूट्यूब का, उसमें कोई बुलाता ही नहीं था अपने को, जाने के भी टिकट नहीं मिलते थे. मुझे भी पता फ्री में भी जा सकते हैं बट कोई नहीं, पता नहीं था. तो हमने कहा कोई नहीं, हम ही करेंगे, जयपुर में ही करेंगे. तो ये आइडिया आया हमको जब हमारे 500 के फॉलोअर हुए थे, तब हम डिनर पे गए थे टीम के और वहाँ पे कहा कि यार चलो एक करते हैं. उस दिन ब्रेनस्टॉर्म करके नाम भी सोचा, थिंक विड करेंगे. डोमेन मिल रहा था तो डोमेन ले लिया. और अगले दिन आके बोर्ड पे एक लोगो बना दिया कि ऐसा लोगो बनाएंगे, एंड दैट्स इट. गई बात ठंडे बस्ते में,
थिंक विड
के कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं, वही नहीं. किसी ने ना पूछा उस दिन, 10-12 लोग थे जो सब, किसी ने कुछ बोला ही नहीं, वो करा ही नहीं, कुछ नहीं हुआ. बस ऐसा होता होगा, बहुत सारे प्लान बनाते हैं हम, कुछ नहीं होता.
रोज बनाते हैं.
फिर मुझे याद है आई गेस 700 या 800 के बाद हम लोग लंच पे ऐसे ही अगेन गए थे एक बार टीम के. तो वहां पे याद आया कि यार ये किसी ने बोला, यार मुझे याद है, अपन ने याद है अपन ने ऐसे बोला था और हुआ तो नहीं कुछ, तो करना है, कैसे करेंगे. मैंने कहा इस बार अगर सब तुम बोलो करना है क्या, करना है क्या, सबको बोले हाँ करना है करना है. मैंने कहा ठीक है, अपने सब मोबाइल निकालो, डालो अपने मोबाइल में स्टेटस, डालो फेसबुक पे या कहीं भी डालो कि हम कर रहे हैं. और है ना हमारे उसमें एक ब्राह्मण भी
अनाउंस कर दिया,
ब्राह्मण था एक बंदा, उसको डेट्स वेट सब पता थे. हमारे वहाँ सावे बोलते हैं, शादी की डेट सावे. तो किस दिन बिल्कुल शादी की डेट नहीं, वो डेट बता दे तू.
अच्छा,
तो उसने कुछ निकाल दी 23 मार्च. हाँ तो आज मैंने कहा सब अनाउंस करो, मैं मेरे डाल रहा हूँ लो 23. उस समय शायद ये जनवरी की बात है और कि 23 मार्च को हम थिंक विड करेंगे और एजेंडा ये है कि सारे टॉप यूट्यूबर्स आएंगे यहाँ पे और आपको सिखाएंगे यूट्यूब वीडियो कैसे बनाना है. सबने डाल दिया. अब मैंने कहा यहाँ तो सब फंस गया,
अब तो करने
ही पड़ेगा. अब तो अब मैंने ही कर दिया, इन्होंने भी कर दिया ना, सबका सबका स्टेक बाइन आ गया उसके अंदर. तो अभी मैं एक जॉर्डन बी पीटरसन है शायद नाम सुना है, उनकी एक स्पीच सुन रहा था. उन्होंने बोला कि यार लाइफ में तुम्हें कुछ भी चाहिए ना, बस तुम्हें सिंसियरली आस्क करना है उसके बारे में लोगों के, यार ये एक चीज करनी है. अब कितनी बड़ी हो सकती है, सद्गुरु का भी हम जस्ट सुन के आ रहे हैं. तो दैट मैन इन अक्टूबर थॉट कि ऐसा सेव सॉइल कुछ बनाना है सिंसियरली, और आज 2.8 बिलियन लोग उस कैंपेन को देख चुके हैं. मतलब हर देश के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से लेके ब्रिटेन के प्रेसिडेंट, सब जगह MOU, ये सब एक मूवमेंट शुरू हो गया इन लेस देन 100 डेज. 75 डेज ही हुए हैं शुरू हुए. तो बस उन्होंने सिंसियरली बोला, उन्होंने बड़ा सोचा, सबको बोला ये करना और लोग करते जा रहे हैं. आगे से आगे इवेंट्स लाइनअप हो रही है और सब कुछ हो रहा है. तो हमारे लिए बहुत छोटी शुरुआत थी, बट मैंने सोचा कि ऐसा कुछ करना है एंड आई सिंसियरली आस्क्ड कि ये करना है एंड हमने डेट अनाउंस कर दी हाथों हाथ, भले कितने लोगों ने देखा होगा 100,000, लेकिन हमने अपने अपने पर्सनल इक्विटी उसमें डाल दी कि यार नहीं करेंगे तो ये। उसके बाद फर्स्ट थिंग थी कि यार हमको जगह फाइनल करनी है, तो उस समय अगेन बहुत ही लिमिटेड, मतलब लिटरली बहुत लिमिटेड बजट पर हम काम कर रहे थे। तो हम जिस वेन्यू पे बुक कराने गए थे, वेन्यू के जस्ट बाहर खड़े होकर हमने बाइक रोकी, मैं और मंदीप मेरे पार्टनर बाइक पे थे वहाँ पे, बाहर बाइक रोकी और डिबेट हो रही हमारी कि यार उस टाइम तो फैन फेस्ट भी होता है 23 मार्च के आसपास, 19-20 को कभी फैन फेस्ट होता है, अभी अनाउंस नहीं हुआ है बट होता है ये, दिस इज 2020 मार्च,
ओके ओ
कि 23 मार्च के आसपास तो फैन फेस्ट भी होता है। मैंने कहा कौन फैन फेस्ट वाला यहाँ आएगा, अलग ही लोग आएंगे, कौन से वो उन बड़े बड़े यूट्यूबर के, नहीं यार स्पीकर तो ऐसे हो सकते हैं कि वहां जा रहे हो अपने यहाँ नहीं आए। मैंने कहा यार देख मंदी मजे मत कर, अब 25 जनवरी हो चुकी है, क्या कर सकते हैं अब 2 महीने ही बचे एनीवेज, नहीं हो पाएगा क्या करें, कि नहीं नहीं पहले कर दो। मैं पहले कैसे कर दें, तो कि 7th मार्च कर लो, वो भी एक और सैटरडे 7th मार्च कर लो, क्योंकि 15th को और भी कुछ कुछ था कि होली थी या कुछ था, 7th ही बच रहा है। मैंने कहा ऑलरेडी 40-50-60 दिन बच रहे हैं, सिर्फ 40 दिन हो जाएंगे, अभी तो एक टिकट भी नहीं बिका है, कुछ भी नहीं हुआ है,
पता ही नहीं क्या करना,
पता ही नहीं है। तो नहीं 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 फिर करते हैं ठीक है, अंदर गए, 7th पूछा, 7th खाली है, खाली था हॉल, बुक करा दिया। तो एकदम वो शिफ्ट हो गया, सोच 22 को क्या हुआ तुझे पता ही है, ठीक है वो एक और स्ट्रोक ऑफ लक हो गया। देन ठीक है, धीरे धीरे चीजें करते गए, मेरे एक दो दोस्त ऐसे फिनोवेशन के प्रसाद है, वो बोला मैं तुम्हें दोस्त आ ही जाऊंगा ऐसा, वो भी मैं अलग स्टोरी है कि क्यों उनको जानता हूँ इतना अच्छा कि मेरे एक कॉल पे आ गए, बट देर आर कपल ऑफ पीपल एंड देन सिंसियरली पुश कर रहे थे कि यार हम ये करना चाहते हैं। स्पॉन्सर स्टार्टेड कमिंग अप, रेड एफ एम आ गया, राजस्थान पत्रिका आ गया, राजस्थान गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर कर दिया, लोग आने लग गए धीरे धीरे, टिकट सब कुछ होने लग गए। बट राइट बिफोर द इवेंट अराउंड 10-15 डेज अगो माई ग्रैंड फादर बिकेम रियली इल एंड सिचुएशन ऐसी हो गई कि मैं इवेंट के एक दिन पहले आ जाऊंगा, मैं अभी मुझे 10-12 दिन वहां रहना पड़ेगा जोधपुर। अब आप जब उस समय तो एटलीस्ट ये है कि आप ही सोच रहे हो और आप ही लीड करो, और हमारे 2 जनों की फुल टाइम टीम थी, मैं मंदीप 2 जने और बाकी सारे कॉलेज के फ्रीलांसर्स और ये सब जुड़ जुड़ के कुछ कुछ काम कर रहे थे, किसी को पैसा नहीं दिया, पेड नहीं था। तो मैंने कहा यार ये तो नहीं हो पाएगा, इसको मतलब कैसे करें। तो एक आइडिया आया कि सब जनों को एक दो पोजीशन कि मैं ये कर रहा हूँ, भली वॉलंटियर से लेके हर जने को, आई एम हैंडलिंग स्पीकर्स, आई एम हैंडलिंग
सबको एक एक,
ठीक है, और ना सिर्फ दो, थिंकविड की वेबसाइट पे और उनकी प्रोफाइल पे सबको पोस्ट करना है कि मैं ये कर रहा हूं इस इवेंट में। अब अगर उन्होंने गड़बड़ हुई तो मेरा तो होना ही है नुकसान, थोड़ा बहुत उनका भी हो जाएगा कि तेरे दोस्त आए यार, तूने तो बोला इतने बड़े बड़े स्पीकर आ रहे, कोई तो नहीं आया यहाँ पे, या बोलो इतनी फाड इवेंट हो रही, इतनी बढ़िया ब्रांडिंग हो रही है, तो क्या बेकार डिजाइन बना रखी है। तो एवरीवन हैड देयर टाइटल्स ऑन मेन वेबसाइट, ऑन देयर पर्सनल प्रोफाइल्स कि यार ये मैं कर रहा हूँ इस इवेंट में, ठीक है, ये दिस इज मी, दिस इज वॉट आई एम डूइंग। तो ये हमने एक चीज बहुत अच्छी कर दी एंड टचवुड दैट इवेंट वेंट सुपर वेल, बहुत मतलब सीखने को मिला। कोविड वाला वो बहुत हो गया था कि यार कोविड आ रहा है, लोग आएंगे नहीं आएंगे, सम पीपल केम, सम जैसे अमन धत्तरवाल कैंसल लास्ट मोमेंट, क्या नहीं कोविड ओविड फैमिली मना कर दिया है। तो इससे दो चीजें हैं कि एक तो आपको सिंसियरली बस बोलना है, हमने ऐसा नहीं था कि हमको इवेंट बैकग्राउंड से या कुछ ऐसा है, हम किसी एक यूट्यूबर को भी नहीं जानते थे, किसी को भी नहीं जानते थे, कभी ऐसे टिकट बेचे ही नहीं कुछ, कभी स्पॉन्सरशिप्स करी नहीं, छोड़ोगे बड़े मीडिया हाउस और राजस्थान गवर्नमेंट, और कभी कुछ करा ही नहीं, बट बस सिंसियरली सोचा, मेरा एक थॉट था। एंड देन टू कॉम्प्लीमेंट दैट देर वर 20 पीपल जिनके बाय इन थे इसके अंदर, क्योंकि उन्होंने अपने लोगों को बोल दिया कि हम ये करने वाले हैं और हम अच्छा करने वाले, अनाउंस कर दिया उन्होंने, दुनिया को बोल दिया कि हम अच्छा करने वाले हैं, दुनिया को नहीं, उन्होंने अपने 100 लोगों को जो जिनके बारे में वो केयर करते हैं, उनके मम्मी पापा, उनके इमीडिएट दोस्त, उनको पता था कि यार थिंकविड में ये स्पॉन्सर है, वॉलंटियर है, कुछ कर रहा है। एंड दीज टू थिंग्स ब्यूटिफुली कॉम्प्लीमेंटेड ईच अदर। मैं 2 दिन पहले आया इवेंट के, सब कुछ कर रखा था टीम ने, काफ़ी कुछ, मतलब सब पोस्टर्स बन गए थे, वेंडर फाइनल थे, सब कुछ हो गया था। और उस इवेंट के एक दिन पहले रात में जब मैंने हॉल देखा, मतलब यार लग रहा है कि हाँ
होगा,
वर्किंग, लोग फ्लाइट में बैठ चुके हैं आने के लिए, ऑल ओवर इंडिया से आ रहे हैं, इवेंट वेंट वेल, लोग नैनीताल से टिकट करा के कोई आ रहा है जयपुर में इवेंट अटेंड करने के लिए, 2 जने कोलकाता से आ गए, तीन चार जने मुंबई से आ गए, उनका यार ये तो थोड़ा सा खैर एनी वे, बट ये दो चीजें मुझे उस दिन सिखाई कि जब तक आप अनाउंस नहीं करोगे पब्लिक में यार मैं ये चीज कर रहा हूँ, आपके ऊपर हम इतने वो सिंसियर नहीं है यार, जैसे तू बहुत क्लियर है जैसे मेरा विजन ही ऐसा कर ही दूंगा मैं, ज्यादातर लोगों के साथ वो नहीं होता सिचुएशन, थोड़ा क्लैरिटी रहता करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे, आपको करना ही है ना अगर आपको बहुत मन है और अभी इस मोमेंट पे मन है अनाउंस इट, तो थोड़ा सा एक पीयर प्रेशर बनेगा, हेल्प हो जाएगी एंड बस जो भी करना है सिंसियरली पूछते जाओ लोगों से, मोर ऑफन देन नॉट आप वो कर ही लोगे, अब आपका विजन कितना बड़ा उतना बड़ा भी कर लोगे, बस सिंसियरली लोगों से पूछो कि मुझे ये करना है।
या सो ए ask the big thing whichever you want, jo badi cheez hai wo, because if you won't ask you won't get it, aur agar tumhe chahiye to tum bologe to tumhe mil hi jayega, that is one, and second is put yourself out there and put everyone who's involved in the process out there in front of the world, taki un log rahegi ab ye baat meri reputation ki hai,
right,
to meri life ka sara kaam log mujhe is cheez pe judge karne lag jayenge ki yaar tu ye sab bolta hai karta nahi hai,
karta nahi hai,
so it's better ki tum wo karo kyunki wo impact मे बी तुम अपने खुद के मोटिवेशन और डिसिप्लिन की वजह से नहीं करो,
right.
लेकिन तुम वो एम्बेरस नहीं हो इसकी वजह से तुम कर जाओगे,
right.
लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है एम्बेरस होने की वजह से,
डेफिनेटली
स्टार्ट टॉकिंग अबाउट योर ड्रीम्स आउट लाउड, राइट, ये मैं भी मानता हूँ, मेरा सबसे बड़ा फियर ही है, डर ही है कि मैं इतनी बड़ी बातें कर जाता हूँ कि मैं कभी वो पूरी कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, अगर नहीं कर पाया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, दैट्स माय बिगेस्ट फियर,
ओके,
कि जो मैं बोलता हूँ वो नहीं कर पाऊँ तो,
बट कर ही लेता ना तू
तो, बट वो करना ये करना ही है इसीलिए कर पाता हूँ क्योंकि आई पुट इन एवरीथिंग,
राइट,
कि भाई कुछ भी हो ये करना ही है, नहीं होगा तो कैसे, क्योंकि बोल तो दिया तुमने इतना बड़ा,
right.
ये सब हंसने लगेंगे,
हंसने लगेंगे,
और जेन्युइनली एट द एंड ऑफ द डे लोग खुद मतलब वो लोग है ना सब सारा काम सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं फर्स्ट, एंड सेकेंड सबसे होता है कि उनके वो पब्लिक प्लीजिंग के लिए करते हैं, तो कितना ही बोले कि मैं पैसे के लिए करता हूँ, मैं समाज में ये करने के लिए करता हूँ, वो करने के लिए करता हूँ, एट द एंड ऑफ द डे फर्स्ट इज सेल्फ सेटिस्फेक्शन, सेकंड इज पब्लिक प्लीजिंग,
या बोलेंगे कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है, सबको
फर्क पड़ता है, इनफैक्ट देयर वाज अ सेइंग, ऐसे ही एक साइकोलॉजिस्ट थे इन कोलंबिया, साइकोलॉजी प्रोफेसर, उसका नाम भूल गया मैं, उसने बोला है कि लोग जो चैरिटी भी करते हैं ना, जो बहुत बोलते हैं कि वी गिव,
नो डाउट,
वो खुद के लिए करते हैं, because they feel happy when they give back.
ये friends देखा है? friends TV show.
हाँ पता है मेरे को friends क्या है बट नहीं
उसमें एक पूरा episode इस पे ही है, उसमें Phoebe Buffay करके character है, वो बोलती है तो Chandler उसको बोलता है there is no selfless good deed, and वो पूरा episode इसमें है कि वो कोई अच्छी चीज करती है तो उसको कोई किसी ने टोस्टर ओवन गिफ्ट कर दिया, अरे यार बहुत अच्छी बात है टोस्टर ओवन गिफ्ट का, फिर वो ओह शिट नहीं नहीं इट्स नॉट गुड मैन आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी,
बट इट्स रियल,
हां इट्स रियल,
सो इसलिए पीपल व्हेन दे आर लुकिंग फॉर सैटिस्फैक्शन, व्हेन दे आर लुकिंग फॉर एवरीथिंग एल्स, तुम अगर अपने ड्रीम्स आउट लाउड बताओगे तो ज्यादा चांसेस है सक्सेस के,
राइट,
सो दीज वर थ्री योर स्टोरीज एंड देयर वाज अ फाउंडेशन स्टोरी फॉर इट, कंक्लूजन में ये है, फर्स्ट इज यू हैव टू गेट अनकंफर्टेबल, ओके, फर्स्ट तुम अनकंफर्टेबल हो और साथ ही साथ एक अपॉर्चुनिटी बनाओ लोगों के लिए जिसमें उन्हें कॉन्फिडेंस गेन करने को मिले,
right.
फिर उसके बाद यू हैव टू बाइंड जितने लोग तुम्हारे साथ काम करें सबको एक पर्पस और ग्रोथ मैप दो, क्योंकि अगर उनकी उनके पास ग्रोथ मैप है आगे वो क्या करने वाले हैं, उनके पास एक पर्पस है, और साथ ही साथ अगर उन लोगों को तुम क्रेडिबिलिटी देते हो कि तुम्हारे काम के साथ वो भी बढ़ रहे हैं,
उनके पर्पस को कॉम्प्लीमेंट
कर रहे हो तो तुम लोग बढ़ने स्टार्ट करेंगे, ओके, नेक्स्ट इज दिस आवर दैट यू नीड टू गिव, you need to ask out in the world, कि तुम अगर पूछोगे नहीं तो तुम्हें मिलेगा नहीं, और जब तुम्हें कुछ काम करना है तो मोर देन मोटिवेशन मोर देन डिसिप्लिन अनाउंसमेंट वर्क्स बेटर, क्योंकि अनाउंस करने से तुम एम्बैरेस होने के तुम्हारे चांसेस
कम
बढ़ जाते बढ़
हाँ, जाते हाँ, अनाउंस हाँ, हाँ, मतलब राइट
बढ़ कर जाते एंड लास्ट नॉट द लीस्ट इज तुम लाइफ में हर चीज पे जब तुम्हारे पास ऑप्शन है तब तुम एक्सप्लोर करना स्टार्ट करो, तुम हाँ बोलते जाओ,
हाँ बोलते जाओ,
क्योंकि तुम अगर जब तुम्हारे पास ऑप्शन है तब हाँ नहीं बोलोगे तो तुम्हें लाइफ में
बहुत ज्यादा
हाँ बोलना पड़ेगा।
यस मैन करके एक मूवी है इस पे, जिम कैरी की, यस मैन नाम है और इट्स अ फैंटास्टिक मूवी, थोड़ा ओवर द टॉप चला गया है बट उसका ये होता है कि जिंदगी में हर चीज के लिए ना बोलता है, फिर उसको कुछ हो जाता है, वो हर चीज के लिए हाँ ही बोलना पड़ता है और फिर उसकी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाती है।
सो गिव अलाउ योरसेल्फ टू डू न्यू थिंग्स रिगार्डलेस ऑफ कि तुम्हें वो आती है नहीं आती है, एटलीस्ट एक्सप्लोर करो,
ट्राई कर लो,
ट्राई कर लो, दैट्स इट। थैंक यू सो मच
थैंक यू